ओम शांति। सब कहां बैठे हुए हैं? मधुबन, अभी मधुबन का ही विस्तार है जिसे हम ज्ञान सरोवर या शांतिवन कहते हैं, है तो मधुबन ही। और ये मधुबन की विशेषता हर भाई बहन को यहां दो तीन दिन जो स्टे होता है, तीन चार दिन का, हर एक को अनुभव होता है कि ये स्थान का महत्व क्या है। केवल शब्दों से महत्व बताने की बात नहीं, आप जब से यहां आए हैं, जो पहली बार भाई बहने आए हैं या आते रहते हैं, आने से ही ये स्थान मन की स्थिति बदल देता है। आने से, और मैं तो ऐसा समझता हूं आने से भी नहीं, जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं, संकल्प करते हैं कि हमने जाना है मधुबन बाबा के पास जाना है, तो मन की स्थिति बदल जाती, आपको अपने ही स्थान पर बैठे हुए ये स्थान आप में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। ये विचार कि हमने बाबा के पास जाना है आपके जीवन में डिसिप्लिन लाता है, आपकी दिनचर्या को ठीक करना शुरू कर देता है, और जो छोटी मोटी कोई कमजोरियां होती हैं वो भरना शुरू कर देता है। है सबका अनुभव, ये हर एक का अनुभव है। और जब यहां पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद इतना उमंग, उत्साह, इतने श्रेष्ठ विचार, कभी कभी ऐसे लगने लगता होगा कि मैं हूं या कोई और है, अपने आप में ही विश्वास नहीं होता होगा कि इतना अद्भुत, इतना विचित्र परिवर्तन कैसे हो रहा है। या आने से ही, आने से ही। ये स्थान अभी जो आप देख रहे हैं, जिसे हम शांतिवन कहते हैं, ये तो अभी कुछ समय की बात है। आज जितना विस्तार या स्वरूप आप देख रहे हैं इसका, सेवाओं का विस्तार नजर आता है, हमें वो दिन याद आते हैं जब हम आए थे यहां पर पहली बार। वो सीन अगर हम इमर्ज करते हैं फिर से मन में, वो सीन को इमर्ज करता हूं तो मैं देखता हूं कि मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी हमारे सेवा स्थान है, इवन गीता पाठशालाएं, वहां पर भी जो भाई बहनों की संख्या इस समय पर है उतनी यहां मधुबन में बाबा के सामने नहीं थी। जब मैं पहली बार 1959 में के शुरू में आया था, वो स्वरूप मैं सामने इमर्ज करता हूं कि वो मधुबन का स्वरूप क्या था। आप विश्वास नहीं करेंगे क्या वो स्वरूप था, हम लोग कैसे आए बाबा के पास यहां पर बाबा से मिलने। व्यवस्था नाम की, ये साधनों नाम की कोई चीज नहीं थी, साधन नहीं थे, मगर साधना तपस्या का रूप हमने देखा था। एक छोटा सा फैमिली का रूप मैंने देखा बाबा का, बिल्कुल एक जैसे हम अपने लौकिक किसी गांव में चले जाएं, फैमिली हाउस में चले जाएं, ऐसा बाबा का छोटा सा शुरुआत में आपने यज्ञ का इतिहास सुना होगा। स्थापना सन 1936-37 में हुई, उसके बाद हैदराबाद से कराची जाना हुआ, कराची में तपस्या चली, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, पार्टीशन हो गया और ये विद्यालय वहीं पर काम करता रहा। ईश्वरीय आदेश के अनुसार 1950 में ईश्वरीय आदेश हुआ कि अब आपको सभी को भारत जाना है क्योंकि आपकी सेवाएं वहां पर होनी है। एक छोटा सा ग्रुप वहां से आया और किस जगह पर इतने भाई बहन इकट्ठे रह सकेंगे और वो तपस्या का स्थान भी अच्छा होगा, वो छोटा सा ग्रुप भारत में आया और अंततः कई स्थान देखने के बाद माउंट आबू को सबका विचार रहा कि यहां पर माउंट आबू जो उन दिनों का और आज का माउंट आबू जमीन आसमान का अंतर है। जंगल घने जंगल हुआ करते थे, ये जो राजस्थान के जो भूतपूर्व राजाएं हैं उनके कोठियां महल ये कुछ खाली पड़े हुए थे और ये तपस्या का स्थान बहुत अच्छा लगा कि यहां पर हम कराची से यहां आ जाएं, ऐसा विचार बना और 5 मई 1950 को सब यहां पर विभिन्न साधनों से, एक लंबी कहानी है, यहां पर पहुंच गए। उस समय का मौसम ठंडी बरसात और वहां कराची से आना और यहां पर अपने आप को एडजस्ट करना और धीरे धीरे फिर सेवाओं का पाठ शुरू हुआ। बाबा के आदेश आए, अब आपको सेवा के लिए जाना है। बहुत सी बहने भाई सेवा के निमित्त यहां से अलग अलग स्थानों पर जाने लगे, कुछ एक के स्वास्थ्य के कारण अपने लौकिक के पास थोड़े उनका भी जाना हुआ और धीरे धीरे यहां पर जो रहने वालों की संख्या इतनी कम हो गई जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और फिर जो दादियां बाबा के साथ अंग संग बिताए 14 साल तपस्या में, इतना बाबा से प्यार प्राप्त किया, छोड़ के भी जाना नहीं चाहते थे यहां से, मगर आदेश था कि सेवा के लिए जाना है। इसलिए वो जब यहां से जाते थे तो वहां सेंटरों पर सेवा केंद्रों की स्थापना हो रही थी, पर उनका मन यहां होता था और कोई ऐसा कारण बने हम जाएं बाबा के पास, मामा बाबा के पास लौट करके, मगर कंडीशन ये होती थी कि जब आना है पंडा बनकर के आना है। अगर एक या दो भी तैयार हो जाते थे उनको लेकर के यहां पहुंच जाते थे। उन दिनों में पार्टियां जो आती थी उनकी संख्या 5, 7, 8 से ज्यादा नहीं होती थी शुरुआत में और दादियां उनको लेकर के आ जाती थी। हम लोग भी आए थे, 7 थे जब हम आए थे और कहा जाता था कि करनाल से हरियाणा से बड़ी पार्टी आ रही है। हम लोग 7 लोग यहां पहुंच गए थे और आज की अवस्था और वो अवस्था में मैंने कहा पहले ही जमीन आसमान का अंतर, कोई रिजर्वेशन रेलवे की नहीं होती थी, ये 3 टायर 2 टायर ये बाद में नाम हमने सुने हैं और यहां पर उस ढंग के साधन नहीं जैसे अभी आप आए हैं तो आपके लिए पहले से ही बेड्स लगे हुए हैं, बिस्तरे लगे हुए हैं और आपका सब साधन है, आप जाइए वहां पर विश्राम कीजिए। हम लोग जब आते थे तो अपनी टैची और बिस्तरा सिर पर रख करके ले आते थे। अभी आपको ट्रेन पर आ पाते हैं तो बसेस लगी रहती हैं वहां पर और आपको यहां ले आते हैं और आपको यहां भी लोकल बसेस आपको अपने स्थान पर पहुंचाती हैं। हमारे समय पर ऐसा साधन नहीं थे। एक हमारी भूरी दादी हुआ करती थी, वो रेलवे स्टेशन पर सीव करके और आबू रोड से माउंट आबू दिन में दो बसें जाती थी। बस का टाइम ना हो तो आबू रोड में इंतजार करना पड़ता था, जब बस मिलेगी तब हम जाएंगे। और फिर माउंट आबू जिन्होंने देखा है, वहां एक पुलिस है, वहां चौक है, एक पुलिस वाला भी आजकल खड़ा रहता है वन वे के कारण। वहां पर बस वो रुकती थी और वहां से हम सिर पर सामान उठा के अपना अपना टैची और बिस्तरा और हम लेकर के बाजार के रास्ते से पहाड़ी से नीचे उतरते हुए पांडव भवन के पीछे के रास्ते से जाया करते थे। कोई टैक्सी कार कोई साधन हम नहीं होता था कि जब दूसरा या तीसरा टर्न में हम आए तो हमें बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया ये बात सुनकर के कि बाबा ने एक बैल गाड़ी वाले को अगेज कर लिया है, वो हमारा सामान वहां से लेकर के आया करेगा। हमें इतनी खुशी हुई जैसे कि हवाई जहाज मिल गया है और हम लोग अपना सामान रख करके और बड़ी ठाट से पैदल और बिना सामान के पांडव भवन आ रहे थे। तो ऐसे लग रहा था आज पता नहीं कौन सा दिन है कि अब हमारा सामान बैलगाड़ी लेकर के लंबे रास्ते से पांडव भवन आएगी। उन दिनों का पांडव भवन भी आप देखें, जो बाहर का गेट है जिस तरफ से ओम शांति भवन अभी बना हुआ है उस गेट के रास्ते से भी हम आजकल आते जाते हैं। जब हम लोग आए थे उन दिनों में वो गेट बंद रखा जाता था, लकड़ी का गेट था, उस रास्ते से कभी बाहर नहीं जाते थे हम लोग। इंस्ट्रक्शन ये होती थी कि उधर जंगल है, जानवर है और नक्की लेक पर जाना मना है। मम्मा बाबा हमें नाश्ते के बाद खुद घुमाने के लिए ले जाया करते थे। इतनी छोटी दिनचर्या हुआ करती थी और सिस्टम हुआ करता था कि कभी आप वो देखे कि उस वक्त ना हिस्ट्री हाल ना ये मेडिटेशन हाल, ओम शांति भवन की तो बात छोड़िए, एक छोटा हाल है जो भाई बहनों ने अंदर अगर वो देखा होगा पुराना, अंदर जो पांडव भवन बना हुआ है जहां हमारी यीशु दादी का ऑफिस है उसके पीछे एक छोटा सा हाल है, जिनको भाग्य मिला हो देखने का, वहां उस हाल में क्लास हुआ करती थी। तीन लाइनों में आगे भाई और तीन लाइनों में पीछे आगे माताएं बहने और पीछे भाई हम बैठा करते थे। 35-40 का ग्रुप था और हम कहा करते थे कि मधुबन का सीजन फुल चल रहा है। ऐसी अवस्था में हम लोग आना हुआ, मगर आप देखिए कि उस समय की पालना और आज की पालना में एक जैसा ही अनुभव हम कर रहे हैं। विशेषता ये आप देखिए, कमाल की बात यह है कि जो पालना का अनुभव हमने किया उस सिचुएशन में, मम्मा बाबा सामने बैठा करते थे और वो जैसे के सामने बैठ के दृष्टि देते और वाणी बाबा चलाते थे और उसके बाद फिर एक चैम्बर हुआ करता था। चैम्बर में ना क्लास के बाद मम्मा के कमरे में हम सब इकट्ठे हो जाते थे, एक जैसे परिवार में मम्मा बाबा मिला करते थे। मम्मा की खटिया पर मम्मा और बाबा बैठ जाते थे, हम जमीन पर बैठ करके चिट चैट करते थे रोज क्लास के बाद, उसको चैम्बर कहते थे। वो अपने दृश्य सामने कभी लाते हैं तो वो जो पालना, वो जो शक्ति बाबा ने डायरेक्ट साकार में आकर के दी, आज जब मैं देखता हूं यहां पर कल बाबा आएंगे, बाबा का आकर्षण आप सबको लेके आया है। कई बार बाबा ने कहा है कि बच्चे आप यहां पर कौन कैसे आए हो, आप ट्रेन से नहीं आए या बस से नहीं आए या अपनी गाड़ी से नहीं आए, बाबा का प्यार आपको यहां खींच करके लाया है, बाबा का प्यार है। आप सबको ये पता है, मालूम है कि यहां पर कितने भाई बहने कल होंगे। कल सीन आप देखना, इतनी बड़ी संख्या में किसको कहां जगह मिलेगी बैठने की, आपको कितने बजे उठ करके दोपहर में आकर के यहां बैठना होगा जगह लेने के लिए, मैं सब जानता हूं। मगर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं, ये ईश्वरी पालना है। बाबा कोई देह में आता है, पर वो है कौन है ये तो हम सब जानते हैं। जो बच्चा जहां बैठा होगा उसको बाबा वहां अनुभव कराता है, ये एक विशेषता है। जहां बैठा होगा, सवाल ये है कि उसके मन में बाबा के लिए सच्चाई, प्यार, लगन, विश्वास ये काम करता है। कहां भी है वो, यहां डिस्टेंस की बात नहीं है। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है कि मैं जब आता हूं तो सबसे पहले मेरी दृष्टि उन पर पड़ती है जो दूर बैठे होते हैं, लास्ट वालों को मैं पहले देखता हूं, उनको अनुभव होता है। हर एक को ऐसा अनुभव होगा कि मैं बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। मैंने कई बार कईयों के अनुभव सुनाए हैं, क्योंकि मुझे बहुत भाई बहने जब से लौटते हैं सेंटरों से, जो भाई बहने आते हैं तो अपने अनुभव सुनाते हैं। वो चित्र अनुभव हम आपको सुनाए, वो चित्र अनुभव। मैंने लास्ट टाइम भी ये शेयर किया था, हमारे साथ एक बहन आई, वो कहने लगी भाई जी मुझे विश्वास है कि बाबा आएगा, पर मुझे ये नहीं लगता कि बाबा की नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, ये मुझे थोड़ा डाउट है। मुझे उसने शेयर किया था रास्ते में। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बाबा के पास आपका थॉट पहुंच जाएगा। और वो बहन आकर के यहां बैठ गई, कोई लास्ट में या बीच में आगे जाकर के जगह मिली, उसको बैठ गई। बाबा आ गए, मुरली शुरू हो गई और वो बहन बैठी हुई है। बैठे बैठे मुरली सुनते सुनते उसको ऐसा संकल्प आया कि आवाज बहुत अच्छी आ रही, इतना बड़ा हाल है, यहां का साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है, उसको संकल्प आया। और बैठे बैठे ऐसे देखने लगी कि साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है। उसी वक्त मुरली में ये शब्द आए कि बच्चे हाल बहुत अच्छा है ना। अब उसके बाद उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा मेरे स्वा और कोई ऊपर देख ही नहीं रहा था, सब तो सामने देख रहे थे, हाल को तो सिर्फ मैं देख रही थी। ये है बाबा कैसे संकल्प पूरा बच्चों का करता है। सिर्फ मेरे में सच्चाई कितनी है, और अंदर से सच्चाई और विश्वास। ये बाबा कौन है? इसलिए मधुबन का महत्व किस चीज में है? मधुबन का महत्व मधुबन के बाबा में है, बाबा है मधुबन का। ये स्थान भी खींचता है, पर स्थान बाबा खींच रहा है। स्थान का महत्व भी बाप दादा के साथ है। ये जो यहां इतने भाई बहनों का संकल्प आप देखिए, सदा एक ग्रुप जाएगा दूसरा आ रहा है, दूसरा जाएगा तीसरा आ रहा है। आप देखिए जो अथक सेवा भाई बहने कर रहे हैं, उनकी आप त्याग तपस्या देखिए। हमारे लिए कितने भाई बहने दिन रात जागते हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी पर बैठे हुए हैं, अकोमोडेशन पर रात को सोए पड़े हैं। हमारे लिए कि हम आएंगे, हमें साधन मिलना चाहिए, भंडारे में काम कर रहे हैं। ये त्याग और तपस्या ने मधुबन का महत्व बढ़ा दिया है, शक्ति भर दी है त्याग और तपस्या ने। हम बैठ करके योग लगाते हैं, बैठ करके बाबा को याद करते हैं, मन एकाग्र करते हैं, और उनके मन में चलते फिरते बाबा और बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे आ रहे हैं, बाबा के बच्चे आ रहे हैं, सबको सुविधा मिले, साधन मिले, आराम से रहे, हमारे आराम के लिए उनका जीवन है। यह त्याग और तपस्या का जीवन जो सबको अनुभव कराता है। मैंने कई अच्छे अच्छे ग्रुप ले आए हमारे आते हैं माउंट आबू में, मुझे एक बार बात याद है, बहुत अच्छा एक जिसको हम आजकल के वीआईपी कहते हैं उनका ग्रुप लेके हम आए थे। हमने उनको कहा भाई आप दो दिन का सफर करके आए हैं, ये आपकी अकोमोडेशन हमने ले दी है, आप बैठिए आराम कीजिए रेस्ट कीजिए। उनका जवाब ये था थकावट रास्ते में थी या आने से हमें थकावट है ही नहीं है, हमें थकावट लग ही नहीं रही है, आने से हमारा शरीर हल्का हो गया है, हम तो लाइट में घूम रहे हैं। ये वाइब्रेशन जो वृत्ति से वाइब्रेशन बाबा कहते हैं, ये उसका इंपॉर्टेंस है, ये वृत्ति से वाइब्रेशन है। हजारों लाखों भाई बहनों की वृत्ति में बाबा बाबा बाबा, ये तो चैतन्य में बाप दादा हमारे सामने आएंगे और कल आएंगे। आपने भक्ति मार्ग में देखा होगा एक छोटा सा मकान बनाते हैं, चार द्वारे बना देते, छत डाल देते हैं, कहीं किसी जगह से मूर्ति जयपुर आदि किसी स्थान से लाकर के उसकी स्थापना कर दी जाती है, हवन यज्ञ करके मंदिर का नाम दे दिया जाता है। जब लोग लाइनें लगा करके रोज मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, कुछ दिनों के बाद वो स्थान शक्ति देने लग जाता है। वो शक्तिशाली स्थान किसने बनाया? हमारी वृत्तियों ने, कि ये देवी का मंदिर है, ये देवता का मंदिर है, हमारी वृत्तियों ने स्थान को शक्तिशाली बना दिया। वो तो बिल्डिंग बनाई गई थी हमारे सामने, और ये तो चैतन्य सर्वशक्तिवान आल माइटी अथॉरिटी बाबा देह साकार में आते हैं। कल आप ये महसूस करेंगे जब बाप दादा आएंगे, यहां 20,000 की सभा में पिन ड्रॉप साइलेंस का अनुभव आप करेंगे, आवाज नहीं होगी एकदम, और एक थॉट में एकाग्रता सारे वातावरण को बदल देगी। बाबा का ये आना और अनेक भाई बहनों के ये अनुभव है कि उस समय जो उन्होंने संकल्प किया अपनी किसी कमजोरी को अंदर संकल्प किया, उनको अथाह शक्ति मिली और हमेशा के लिए उनका संस्कार खत्म हो गया। ऐसे अनुभव चमत्कार के हमने देखे, क्योंकि शक्ति का स्रोत बन जाता है। एक थॉट में हजारों भाई बहने जब एकाग्र हो जाते हैं तो शक्ति का स्रोत बन जाता है, ताकत बन जाती है। ये वातावरण का प्रभाव आप अभी देख रहे हैं। इसलिए वो जो छोटा सा मैं आपको जिक्र कर रहा था मधुबन का स्वरूप, जो हम आए थे 1959 के आरंभ में, हमें उस वक्त क्या चीज हमें खिंचाव करती थी, मन करता नहीं था जाने को। उन दिनों में तो रिजर्वेशन होती नहीं थी, पहले से प्रोग्राम भी उस ढंग से बना के हम नहीं आते थे कि इसी डेट को वापस आना है। हम लोगों का अंदर होता जितना समय हम ज्यादा से ज्यादा यहां रहें, मन करता था हम रहें, जाने को मन नहीं करता था। दो तीन दिन के अंदर ऐसे महसूस होने लगता था कि यही अपना यही है, मैं कहां जाना, कहां है, कहां जाना है। जैसे उस दुनिया को याद करके ऐसे लगता था फिर से उस दुनिया में जाना है। यहां मम्मा बाबा की पालना और उनका प्यार और उनका स्नेह, वो चीजें जो थी, और साधन कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। हमें अंदर आत्मा को एक्चुअली क्या चाहिए, ओरिजिनलिटी हमारी ये, ओरिजिनलिटी हमारी ये कि हमें स्नेह चाहिए, हमें सच्चा प्यार चाहिए। हमारी वो खुराक है, खुराक हमारी क्या चीज है, खुराक है सच्चाई, खुराक है सच्चा निस्वार्थ प्यार। असली चीज वो है, वो चीज नहीं मिलती है आत्मा को तो तो आत्मा भटक गई है मनी मटेरियल में, साधनों में। ये साधनों की जरूरत तब पड़ती है जब सच्चाई नहीं है, संबंधों में प्यार नहीं। अब आप देख लीजिए ओरिजिनलिटी, आपको मैं एक सीन देखिए, मर्ज कीजिए। एक छोटा बच्चा है, गरीब घराने में है, झुग्गी झोपड़ी में पैदा हो गया, 8 दिन का 15 दिन का है, अपनी मां के साथ लिपटा हुआ है। उसको सेठ या कोई और या कोई चीज, या थोड़ा बड़ा भी हो जाए, थोड़ी समझ आ जाए उसको 6 महीने साल का, वो उस झुग्गी झोपड़ी से अपनी मां बाप को छोड़ के नहीं जाएगा। उसको कार वाला खड़ा हो जाए आकर के लेने के लिए, नो ही विल नॉट गो। ओरिजिनलिटी हमारे अंदर क्या चीज है? ओरिजिनलिटी हमारे अंदर है, हमें अपनापन चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें वो फीलिंग, वो जब नहीं मिलती है तब ये दूसरी चीजों में मन भटकता है। हमें ये साधन चाहिए, हमें ये साधन चाहिए, खाने के लिए, रहने के लिए, ये प्रबंध, और ये जितने भी बढ़ते चले जाएं, इससे अंत आत्मा को संतुष्टता नहीं होती है। आप देख लीजिए पिछले 100 साल में 50 साल में साधन बढ़ते चले गए, बाहर की दुनिया में कितने साधन बढ़ रहे हैं, कितनी सब चीजें बढ़ रही हैं, साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या क्या चीजें, क्या क्या साधन, मगर अंदर क्या चीज हो गया? अंदर इंटरनल पावर खत्म होती चली जा रही, खोखलापन आता चला जा रहा है। संबंधों में स्वार्थ है, एक परिवार के अंदर वो चीज नहीं अनुभव हो रही है। लौकिक में आप बाहर की दुनिया में जाएंगे, रह रहे हैं। मैं विदेश में गया था, मुझे याद है, मुझे एक जगह किसी के घर में ले गए, मैंने देखा तो वहां पर लोगों के जो वहां पर किसी का बॉक्स है, किसी का अटैची है, किसी का कोई चीज है, उसमें स्लिप लगी हुई थी। मेरा ध्यान गया इसमें स्लिप क्यों लगी हुई है, किसी में हस्बैंड का नाम था, किसी में वाइफ की स्लिप लगी हुई थी। मैंने कहा ये स्लिप क्यों लगा रखी आप लोगों ने? कहता है जितने दिन इकट्ठे हैं ठीक है, बाद में अपना सामान ले जाएंगे। ये जीवन है।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश, आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश, आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
जन्म जन्म की प्यास बुझाने पावन बन सरकार।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज।
तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज।
संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज।
तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज।
सुख शांति और पावनता से भोले भर लो आज।
योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन अधिकार। परम धाम से आए हैं
चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार।
योगी बनो ज्ञानी बनो योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
किसी में वाइफ की स्लिप लगी हुई थी, मैंने कहा ये स्लिप क्यों लगा रखी आप लोगों ने, कहता है जितने दिन इकट्ठे हैं ठीक है बाद में अपना सामान ले जाएंगे। ये जीवन है, ये जीवन है, जहां पर अपनापन नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं हमें, वहां में अनुभूति क्या होगी है? यहां पर क्या अनुभूति हो रही है? ये स्थान हमें मधुबन क्या अनुभव, कितना बढ़िया नाम है मधुबन, मीठा भी है और तपस्या भी है, बन भी है, वैराग भी है अंदर। यहां मन स्थिति ऐसी हमारी बनी हुई होती है, जो भी भाई बहने आते हैं बाबा के स्थानों से आते हैं सब पहले से उनकी मन स्थिति बनी होती है, और जो मैंने देखा है भिन्न भिन्न कॉन्फ्रेंसिस में, भिन्न भिन्न प्रोग्राम में, शिविरों में नए भाई बहने भी आते हैं, संबंध संपर्क वाले भी आते हैं, यहां पर उनको ये ऐसा वाइब्रेशन मिलता है ऐसा। कोई किसको कहे या ना कहे, अपने आप मन अंदर जो सच्चाई को ग्रहण करने लगता है, सच्चाई को धारण करने लगता है, सत्यता स्पष्ट होने लगती है अपने आप। यहां पर मधुबन की विशेषता यह है कि यहां अपने आप कोई किसको कुछ नहीं कहता है। हमारी मनोहर दादी थी, एक बार वो हमारे से शेयर कर रही थी, बाबा ने उनको साकार बाबा ने पूछा बच्ची कैसे लग रहा है, अनुभव ऐसे शेयर किया साकार बाबा के दिनों में, तो मनोहर दादी कह लगी बाबा मधुबन तो ग्लास पैलेस है, यहां आने से हमें अपने अंदर की हर चीज नजर आने लगती है, हर चीज रियलाइजेशन होने लगता है। कोई किसको कोई वहां पर कहे हमें तो हम कहेंगे नहीं नहीं, यहां पर स्वतः मधुबन का महत्व यह है कि स्वतः मुझे अपनी उन सूक्ष्म कमजोरियों का ज्ञान होने लग, समझ आने, रियलाइजेशन होने लगता है जो मुझे कई दफा नहीं समझ आता है। ऐसे महसूस होने लगता है कि मेरी ओरिजिनलिटी क्या है, मैं क्या कर रहा हूं।